मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा सादर नमस्कार। मित्रों, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले दो ऑडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, यह तीसरा ऑडियो उसी का ही एक्सटेंशन है और जिसका शीर्षक है जीवन में संतुलन। इसे आप जीवन में संतुलन का भाग तीन कह सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में संतुलन विषय पर जो बातें अभी तक की गई हैं वो आप लोगों को काफी रुचिकर लग रही हैं और आप लोगों के विचारों में इसने एक थोड़ी सी हलचल भी पैदा की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन पर इसका थोड़ा बहुत सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप लोगों के फीडबैक से मुझे थोड़ा बहुत अनुभव होता है। मित्रों, एक बात जो विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास एक दो मेल भी ऐसे आए हैं जिसमें सिविल सर्विस के हिसाब से उन्होंने ये पूछा है कि आप अपनी बात को संक्षिप्त में क्यों नहीं कह सकते, जबकि सिविल सर्विस में तो कहा ही जाता है कि 200 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, यहां मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में भी कह सकता हूं। कहिए तो जीवन में संतुलन पर मैं 15 मिनट में भी बोल सकता हूं और 5 मिनट में भी बोलकर खत्म कर सकता हूं, और सच पूछे तो 5 घंटे भी इस पर बोला जा सकता है। सवाल यह है कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि मुझे सिविल सर्विस में इस पर निबंध लिखने को कहा जाएगा 200 शब्दों में लिखिए, तो मैं 200 शब्दों में उसे समेट दूंगा। लेकिन यहां जो मेरा उद्देश्य है वह है आप लोगों से बातचीत करना, और इस तरीके से बातचीत करना कि वह बातचीत आपकी समझ में आ जाए। और मित्रों, चूंकि जो समझने वाला वर्ग है वो बहुत विस्तृत वर्ग है, जिसमें नौजवान साथियों से लेकर के बहुत अनुभवी लोग तक शामिल हैं, सामान्य गांव में रहने वाले व्यक्ति से लेकर के बहुत पढ़े लिखे और विद्वान तक के लोग शामिल हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मुझे अपनी बात बहुत विस्तार के साथ, व्याख्या के साथ, कभी कभी गंभीरता के साथ भी कहनी पड़ती है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो इस तरह के विषय हैं वो लंबे होते चले जा रहे हैं और शायद आगे भी लंबे होते रहेंगे। तो इससे यदि आप लोगों में से किसी को थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मुझे लगता है मित्रों कि जो बात कही जाती है, जहां तक मैं समझता हूं कि उसमें दोहरापन तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा कि एक ही बात को बार बार कहा जा रहा हो। हाँ, ये जरूर है समझाने के लिए कुछ उदाहरण लाने पड़ते हैं, कुछ बातों को जो पुरानी हैं उन्हें फिर से यहां दोहराना पड़ता है, वो तो हो सकता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऊब से बचा सकूं, और मेरी कोशिश ये भी होती है कि आपके समय का मैं सही सदुपयोग भी कर सकूं। ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि आप बेकार के इस ऑडियो को सुन रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, इस सफाई के साथ ही अब मैं पार्ट तीन में, जो मैंने वायदा किया था कि हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, वह यह है कि पार्ट टू को जो हमने समाप्त किया था वो इस पॉइंट पर किया था कि जो संतुलन है वही सही होता है, या संतुलन का अर्थ है सही, या कह लीजिए कि जो सही है वह संतुलित होता है। इसको आप जिस रूप में भी समझ लीजिए, बात एक ही है। इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा कि ये बात मैंने क्यों कही कि संतुलन ही सही होता है। मित्रों, जैसा कि मैंने म्यूजिक का उदाहरण दिया था, आप देखिए कि जो म्यूजिक के बहुत अच्छे जानकार होते हैं वो जहां भी थोड़ा सा असंतुलन दिखाई देता है वो तुरंत पकड़ लेते हैं उसको। हालांकि दूसरों को जो इसके बहुत अच्छे जानकार नहीं है उन्हें उस असंतुलन में भी काफी आनंद आता है, लेकिन जो जानकार है वो उसको पकड़ लेते हैं। मैंने स्पोर्ट्समैन के भी उदाहरण दिए थे, जो एथलेटिशियंस होते हैं वो किस तरीके से जब जमीन पर आते हैं तो उनके संतुलन को देखा जाता है कि वो कितने संतुलन के साथ जमीन का स्पर्श करते हैं। जब फ्लाइट उड़ाने वाला जो पायलट होता है वो किस तरीके से टेक ऑन, मतलब जमीन पर प्लेन को उतारता है बिना झटके के, वह भी संतुलन पर ही निर्भर करता है। सब चीजें संतुलन पर ही निर्भर करती हैं। तो मित्रों, ये जो संतुलन है ये बहुत बड़े चैलेंज की मांग करता है। जब हम संतुलन की बात करते हैं तो नो डाउट कि इसमें हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये तीनों कंटेंट शामिल होते हैं। हमको तीनों लेवल पर अपना संतुलन साधना होता है, और इनमें जरा सा भी, कहीं थोड़ा सा भी अगर विकार आ जाएगा तो आप देखेंगे कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप पूरी की पूरी प्रकृति को देखिए, ज्यादातर उदाहरण मैं प्रकृति से ही लेता हूं, तो प्रकृति में आपको एक बड़े अद्भुत किस्म की लय दिखाई देगी, एक रिदम दिखाई देगा। यह बात अलग है कि आम आदमी के तौर पर हम लोग उस रिदम को पकड़ नहीं पाते। आप जैसे पिरामिड को देखिए, तो पिरामिड में आपको मिलेगा कि नीचे काफी तल चौड़ा है और इसके बाद क्रमशः वो सकरा होता हुआ चला जाता है, वो उसका रिदम है। आप मंदिर को देख लीजिए, आप मस्जिद को देख लीजिए, गिरजाघर को देख लीजिए, मकानों को देख लीजिए, महल को देख लीजिए और यहां तक कि झोपड़ी को देख लीजिए, उसमें आपको एक रिदम मिलेगा, एक लय मिलेगी। और जिस लय और रिदम की मैं बात कर रहा हूं, उसे ही आप दूसरे शब्दों में अनुपात कह सकते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर का सौंदर्य क्या है, आप जरा इस पर विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको सुंदर लगता है तो उस सुंदरता का पैमाना क्या है। सुंदरता का पैमाना यही होगा कि पहले जब जैसे ही आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले उसका शरीर दिखाई देता है। हम देखते हैं कि उसका शरीर आनुपातिक रूप से कितना फिट है। जो शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग हैं उनमें जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना सही है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लंबाई में तो काफी है, 6 फीट है, लेकिन उसके हाथ छोटे छोटे हैं, या उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, या पैर छोटे हैं, गर्दन छोटी है, या जरूरत से ज्यादा गर्दन लंबी है, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। या नाक, ओंठ, छोटी सी भी आप चीज को ले लीजिए, तो हमारा जो दिमाग है और हमारी जो आंखें हैं, याद रखिए कि जिस सौंदर्य की बात करती हैं, सच यह है कि वो सौंदर्य उसे अनुपात में मिलता है। जहां अनुपात सही होगा वहां सुंदरता होगी। खाना पकाना वो कला है। दाल में जरा से भी नमक कम हो जाए तो फीकी हो जाती है, आप नमक की मांग करते हैं, और अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो पता लगा कि वो दाल जो है ना वो जहर जैसी लगने लगती है, तीखी लगने लगती है, आप उसे नहीं खाते हैं। तो ये जो स्वाद बिगड़ा, ये किस वजह से बिगड़ा? क्योंकि उसमें जो दाल थी, जो पानी था और जो नमक था, इन तीनों के अनुपात का में गड़बड़ी आ गई। तीनों का अनुपात असंतुलित हो गया और जैसे ही ये असंतुलित हुआ वैसे ही उसका स्वाद खत्म हो गया और सच पूछे तो उसका रंग भी खत्म हो जाएगा, जिसे आप सौंदर्य कह सकते हैं, यानी कि उसकी पूरी लय समाप्त हो गई। मित्रों, आप कभी हाथी की चाल को देखिए। पता नहीं आप लोगों ने हाथी की चाल देखी है या नहीं देखी है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा तो जरूर होगा, एक फिल्म ही आई थी गजगामिनी, जो गज के समान जो चलती हो गजगामिनी, बड़ा सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता है। इस चाल को जो हाथी के समान चले वो एक बहुत ही मस्तानी चाल मानी जाती है, बड़े इत्मीनान की चाल मानी जाती है और बहुत ठोस चाल मानी जाती है। आप कभी देखने की कोशिश कीजिए, सौंदर्य को पकड़िए। प्रकृति में अद्भुत सौंदर्य बिखरा पड़ा है, तब आप संतुलन के बारे में सही एक तरह से मैं कहूं अवधारणा बना पाएंगे। सौंदर्य के बारे में आपका अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, संतुलन के बारे में आपका अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वो आप प्रकृति को जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि सच में ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे संतुलन काम कर रहा है, कैसे लय काम कर रही है, कैसे सब में अनुपात का सौंदर्य छिपा हुआ है, अनुपात का विज्ञान छिपा हुआ है। आप हाथी को देखिए, उसके पीछे के हिस्से को देखिए कि वो कितने इत्मीनान से चलता है। पीछे से देखेगा, सामने से देखेंगे तो उसका सौंदर्य दिखाई नहीं देगा, पीछे से आपको सौंदर्य दिखाई देगा कि कितने ठोस तरीके से वो बड़े इत्मीनान के साथ धीरे धीरे अपने पैर उठाता है और बड़े इत्मीनान के साथ बहुत ठोस रूप में जमीन पर पैर रखता है। उसमें आपको जरा भी कंपन दिखाई नहीं देगा, जरा भी कंपन दिखाई नहीं देगा। और उसके जो पीछे का हिस्सा है, जिसे आप नितंब वाला हिस्सा कहेंगे, आप देखें कि उसमें कैसे आपको एक अद्भुत किस्म की लय दिखाई देगी, जैसे कि हाथी की पूरी पकड़ अपने पूरे के पूरे शरीर पर बनी हुई हो और उसकी चाल पर भी उसकी पकड़ हो। उसके चाल में ये जो धीमी गति है, वो चीते की तरह उछाल नहीं भरेगा, वो हिरण की तरह भी नहीं चलेगा। ये जो धीमी गति है हाथी की, जो धीमी गति है वो उसके शरीर के का जो आकार है उसके अनुपात में है। आपको दौड़ता हुआ हाथी कभी उतना सुंदर नहीं लगेगा, आप देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन चलता हुआ हाथी, जो बहुत इत्मीनान से चलता हुआ हाथी है, वो सुंदर लगेगा, क्योंकि उसके शरीर का जो बृहद आकार है, जो बड़ा आकार है, उसका अनुपात चाल की धीमी गति के साथ ही बैठता है, वो आपको बेहतर लगेगा। लेकिन चिड़िया, तेज उड़ती हुई आपको चिड़िया अच्छी लगेगी, हिरण, छलांग मारता हुआ हिरण आपको अच्छा लगेगा, चलता हुआ हिरण आपको अच्छा नहीं लगेगा, छलांग मारता हुआ हिरण अच्छा लगेगा। तो मित्रों, ये जो संतुलन है ये लयात्मक होता है, ये जो संतुलन है ये सौंदर्यात्मक होता है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये रचनात्मक भी होता है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है। इसमें बहुत अद्भुत ताकत होती है चीजों को रचने की, चीजों को बनाने की, बहुत अद्भुत ताकत होती है। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैंने आपके सामने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के उदाहरण दिए, मैंने आपको पिरामिड के बारे में बताया, झोपड़ी से लेकर के महलों तक के बारे में बताया, या मूर्तियां आप देख लीजिए, सब में आपको एक जो रचनात्मकता दिखाई दे रही है, जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, जो संरचना दिखाई दे रही है, उसमें रचनाकार ने किया क्या है? रचनाकार ने कुछ नहीं किया है। जो उसमें जो अलग अलग तत्व हैं, उसके जो अलग अलग अंग हैं, उनके बीच में एक संतुलन स्थापित किया है, और जैसे ही संतुलन स्थापित होता है उसमें एक रिदम आ जाता है, उसमें एक लय आ जाती है। चाहे वो नृत्य की रचनात्मकता हो, चाहे वो पेंटिंग की रचनात्मकता हो, चाहे वो गायन की रचनात्मकता हो, चाहे वह लेखन की रचनात्मकता हो, जहां भी रचना है वहां आपको संतुलन का सौंदर्य मिलेगा ही मिलेगा। और जरूरी नहीं है मित्रों कि हर रचना में जो संतुलन का सौंदर्य है वो 100% परफेक्ट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन रचनाकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संतुलन बनाकर रखे। और जो रचनाकार अपनी रचना में, मैं जब रचना की बात कर रहा हूं तो आप उसे सिर्फ लिटरेचर से जोड़ करके मत देखें, जो भी चीज रची गई है उन सब से जोड़ करके देखें, जो रचनाकार अपनी रचना में जितना ज्यादा संतुलन पैदा कर सकेगा, जो अलग अलग अनुपात हैं उन अलग अलग अनुपात में एक लयात्मक संबंध स्थापित कर सकेगा, एक रिदमिक रिलेशन बना सकेगा, वह रचना उतनी ही श्रेष्ठ होगी और वह उतनी ही ज्यादा आपको अपील करेगी। देखिए, जो कला का जो सौंदर्य होता है, जो हमें अपील करता है, वो हमें लगता है कि उसके लेखन में है, नहीं, वो जो लेखन के जो डिफरेंट डिफरेंट अंग हैं उनके बीच में जो बैलेंस बनाया गया है, उस बैलेंस में उसका सौंदर्य निहित होता है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि यदि आपको सुंदर बनना है, सुंदर दिखना है, या सौंदर्य को देखना भी है, तब भी आपको अपने अंदर संतुलन लाना होगा। देखिए, यहां मैंने थोड़ी सी हटकर बात कही है, और वो है कि केवल सुंदर दिखना ही नहीं है बल्कि सुंदरता को देखना भी है। अगर आपके अंदर भावनाओं का वो सौंदर्य नहीं है तब आप उसके सौंदर्यता को, उसकी सुंदरता को नहीं पकड़ सकते। जैसे मान लीजिए कि आप ताजमहल के सामने खड़े हैं, ताजमहल एक भव्य महल है, दिखने में सुंदर है, आप वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, वास्तुकला की दृष्टि से उसकी प्रशंसा कर सकते हैं अगर आप उसके जानकार हैं तो। लेकिन यदि उस ताजमहल के साथ जो जुड़ा हुआ मिथक है, जो शाहजहां और मुमताज के प्रेम की कथा है, अगर वह भी आपको मालूम हो जाए और आपके इस वास्तुकला के ज्ञान के साथ इस भाव का संतुलन बैठ जाए, तो आप खुद सोच करके देखिए कि वही ताजमहल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अचानक धड़कने लगा, सांस लेने लगा। अभी तक वह ताजमहल जो आपको गारे, मिट्टी और पत्थर का एक मकान सा दिखाई दे रहा था, आपको धड़कता हुआ हृदय दिखाई देने लगेगा, सुनाई पड़ने लगेगा। यह कैसे हुआ? क्योंकि यहां आपने अपने ज्ञान और अपने भाव, इन दोनों में एक संतुलन स्थापित कर लिया, और जैसे ही आपका यह संतुलन बना वैसे ही ताजमहल के सौंदर्य में कई गुना ज्यादा वृद्धि हो गई। मित्रों, ताजमहल में कुछ भी नहीं हुआ है, ताजमहल ज्यों का त्यों है, जैसे पहले था वह अभी भी वैसा ही है। जो परिवर्तन हुआ है वो आप में हुआ है। आप अपने अंदर वह परिवर्तन लेकर आए हैं और यह परिवर्तन या यह संतुलन आप जितना ज्यादा बना सकेंगे, ताजमहल को आप उतनी देर तक उसी भाव बोध के साथ निहारते रहेंगे। मित्रों, फिल्मों के साथ यही होता है, कला के दूसरे रूपों के साथ यही होता है। आप जब नृत्य देखते हैं तो थिरकने लगते हैं, आप जब गाने सुनते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं, आप जब फिल्में देखते हैं तो रोने लगते हैं या हंसने लगते हैं या खिलखिलाने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो झूठ है, स्टोरी है, गलत है, ऐसा नहीं हुआ है, इसके बावजूद आप रोते हैं। सोच करके देखिए क्या हो जाता है। इसका मतलब है कि जो भाव जगत की जो प्रबलता है, भावनाओं के बीच में यहां एक बहुत अच्छा संतुलन स्थापित हो गया है और चिंतन किनारे हो गया है। कला के साथ यहां चिंतन काम नहीं कर रहा है। भावनाओं में जितना अच्छा आपका संतुलन बैठेगा, उतना ही बेहतर आप उस फिल्म को, उस कला का आनंद ले सकेंगे। तो दोस्तों, दो बातें यहां सबसे महत्वपूर्ण हैं कि यदि आपको सुंदर दिखना है या सौंदर्य का रसास्वादन करना है तो अपने अंदर संतुलन पैदा करना पड़ेगा, और यदि आपको अपने जीवन में रचनात्मकता लानी है, सृजनात्मकता लानी है, संरचनात्मकता लानी है, क्रिएटिविटी लानी है, तो भी आपको अपने अंदर संतुलन लाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहां जिस मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूं, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और संरचनात्मकता की बात कर रहा हूं, इसका नो डाउट बहुत कुछ संबंध स्पिरिचुअलिटी से भी है, और हो सकता है कि इस संतुलन वाले पॉइंट को अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी वाले ऑडियो से जोड़ करके देखेंगे तो आपको फिर से एक नई दृष्टि मिल सकती है, नए विचार आपके अंदर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी तक जो पहुंचने का मार्ग है वो ये रचनात्मकता ही है, ये सृजनात्मकता ही है, इसी के जरिए हम स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचते हैं। इसीलिए आप किसी सिंगर से बात करके देखिए तो वो क्या कहते हैं कि ये मेरी इबादत है, जो गाना है, जो गायन है, ये मेरी पूजा है, ये मेरी साधना है, और इसी के माध्यम से मैं ईश्वर को प्राप्त करता हूं। नृत्य वाले से पूछ करके देखे तो वही ये बात कहता है, वह भी यही बात कहता है। जिसके हाथ में छेनी और हथौड़ा है उनसे बात करके देखिए तो वो भी यही बात करता है कि मैं तो अपनी इस मूर्ति में, मुझे तो जीवन डालना है, ब्रह्मा व्यक्ति को बनाता है, जीवन देता है, मैं इस मूर्ति को जीवन दूंगा, तो कैसे उसमें वो जीवन का संचार करेगा। सोच करके देखिए, बिना उस स्पिरिचुअलिटी के ये संभव नहीं है। कला में स्पिरिचुअलिटी होती ही होती है, यहां तक कि जितने वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं और बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए, फिलॉसफर हुए हैं, वो भी तभी इस लेवल को पाते हैं जब वो स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचते हैं। इसके बारे में मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी में आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा की थी, इसीलिए मैंने जानबूझ करके यहां उसका उल्लेख किया है ताकि आप उससे इसे जोड़कर देख सकें और समझ सकें। फ्रेंड्स, अब मैं इसके इस पॉइंट पर आता हूं कि ये जो संतुलन है, इस संतुलन को आप देखेंगे कैसे और साधेंगे कैसे। देखेंगे कैसे का मतलब यह है कि इसके ठीक पहले वाले ऑडियो पर आप जरा सा जाएंगे तो आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि ये जो संतुलन है, याद रखिए, कभी भी आदर्शतम स्थिति में नहीं होता, वो हमारी एक कल्पना होती है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, ये बात मैंने कही थी। और हमें आदर्शतम स्थिति को पाने के केवल प्रयास मात्र करते रहना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड होने से बचाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने जो सोच रखा है, हमने जो कल्पना कर रखी है, जब हम उसे नहीं पा पाते हैं, चाहे वो जीवन का सामान्य उद्देश्य ही क्यों ना हो, तो हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगता है, एक चिड़चिड़ापन आने लगता है, एक खिजलाहट, बौखलाहट पैदा होने लगती है। और ये जो खिजलाहट बौखलाहट है अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मैं अपना संतुलन खो रहा हूं, ये संतुलन खोने का ही प्रमाण है। तो आदर्शतम स्थिति को पाने के सिर्फ प्रयास होने चाहिए, दैट्स ऑल। दूसरी बात मैंने उसमें कही थी कि याद रखिए कि ये जो संतुलन है ये अस्थिर होता है, आप एक ही जैसे संतुलन में हमेशा नहीं रह सकते, यह भी मैंने आपको बताया था मित्रों, एक रचनात्मक व्यक्ति है, हर समय लिख नहीं सकता, हर समय गा नहीं सकता, हर समय बजा नहीं सकता, हर समय खोज नहीं कर सकता, हर समय विचार नहीं कर सकता। एक संतुलन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, टाइम मतलब ये नहीं कि कोई बंधा बंधाया टाइम होता है, उसके अंतर जगत में लगातार मंथन चलते रहते हैं। जैसे हमारे सामान्य व्यवहार की बात देख लीजिए, आप अपने व्यवहार सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है वहां से लेकर के और एक दिन के पूरे आप उस समय तक के अपने व्यवहार का विश्लेषण कीजिए जबकि आपको नींद आ जाती है, नींद खुलने से लेकर के फिर से नींद लग जाने तक के अपने व्यवहार का एक दिन विश्लेषण कीजिए, केवल एक दिन के व्यवहार का, और आप देखिए कि कैसे उस 15-16 घंटे में जो आपके आपका जो जागृत काल रहा है, जिस पीरियड में आप अलर्ट रहे हैं, उस पूरे के पूरे पीरियड में आपके व्यवहार में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके आचरण में कितनी ज्यादा तब्दीलियां आई हैं, आप सोच करके देखिए। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी और मैं बल्कि सच पूछे तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक लिस्ट बनाइए कि सुबह ये हुआ, उठते 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 ही इस बात पर निराशा पैदा हुई, फिर इस चाय की प्याली आ गई तो मन बिल्कुल आप खुश हो गया कि अरे वाह अब चाय पियेंगे, इसके बाद अखबार में आपने कुछ दुखद न्यूज सुनी तो फिर मन खट्टा हो गया, इसके बाद फोन आ गया, अच्छे दोस्त का फोन आ गया तो मन फिर बहुत अच्छा हो गया, इस तरीके से आप बताइए। इसके बाद फिर गुस्सा आ गया और फिर मन में आह्लादित हो गए, आप खुश हो गए, आनंद से भर उठे, फिर निराशा से हुए, फिर खींच आने लगी और पता नहीं क्या क्या होने लगा, आलस्य आने लगा और फिर जोश आ गया, और उन सारी की लिस्ट बनाइए क्योंकि उससे वो आपके लिए आईना का काम करेगी, वहां आप अपने संतुलन का सही मायने में एक फोटोग्राफ ले सकेंगे कि ये मेरे संतुलन की स्थिति है। अब आप देखेंगे जैसे कि ECG लिया जाता है, आप देखें ना हार्ट का ECG लिया जाता है तो रेखाएं उभरती हैं कि कुछ रेखाएं कम ऊंचाई तक जाती हैं, कुछ रेखाएं बहुत ऊंचे चली जाती हैं, फिर कुछ धीरे धीरे चिक 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 करके फिर से ऊपर जाती है, तो ये पता लग रहा है कि ये जो दिल है वो किस तरीके से धड़क रहा है, ये उसका प्रमाण है। ठीक इसी तरह से आप अपने भावना विचार व्यवहार और आचरण का इस तरीके से एक ECG ले सकेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये जो बहुत हाई लेवल पर गया है, हाई लेवल पर गया है मतलब उस समय संतुलन कुछ अलग तरीके का था, तो ये हाई लेवल पर जो गया है ये हाई लेवल पर क्यों गया, फिर आप उसकी एनालिसिस करेंगे। जब आप उसके एनालिसिस करेंगे तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे, वो तत्व मिलेंगे जिनके आधार पर आप अपने आप को समझा सकेंगे, अपने आप को बता सकेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आप जान सकेंगे कि ये जो मेरा संतुलन यहां पर गड़बड़ हुआ है वो किस वजह से हुआ है। मित्रों, मैं इस विचारधारा का हूं कि आप सबको अपने अपने जीवन का नक्शा खुद तैयार करना पड़ेगा, अपने अपनी लाइफ के लिए जो रेसिपी आप बनाएंगे वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर मैं आपको बनाकर दूंगा तो वो मेरे तरह से होगी, आपकी तरह से नहीं होगी, वो आपको ठीक उसी तरह से फिट नहीं बैठ सकती जैसे कि मेरी कमीज आपको फिट नहीं बैठेगी और आपकी कमीज मुझको फिट नहीं बैठेगी। ये बात अलग है कि शरीर को ढकने का काम तो हो जाएगा लेकिन शरीर की सुंदरता उससे सधेगी नहीं। एक दिन आप करके देखिए तो आपको बड़ी मनोरंजक चीजें, बड़ी मनोरंजक बातें पता लगेंगी और मान करके चलिए कि फिर वहां से संतुलन को साधने का काम आपका शुरू हो गया है। लेकिन जब आप संतुलन को इस तरीके से साधेंगे, इस तरीके से उसकी एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस करते समय हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि जो ये संतुलन होता है ये सापेक्ष होता है, रिलेटिव टर्म्स में होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बहुत दुखद खबर मिली, अपने किसी प्रिय जन की मृत्यु की सूचना मिली मान लीजिए, तो आपको रोना आएगा। अब इस रोने को कुछ लोग कमजोरी कह सकते हैं, कुछ लोग कायरता कह सकते हैं, कुछ लोग लिजलिजापन कह सकते हैं, कुछ लोग इलॉजिकल कह सकते हैं, और इलॉजिकल तो है, अगर लॉजिक के आधार पर देखेंगे तो इलॉजिकल है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि उस समय उस व्यक्ति ने अपना संतुलन खो दिया है या कि वो संतुलित है? मुझे लगता है कि उस समय रोना ही उसका संतुलन है, अगर वो उस समय नहीं रोता है, अपने को जबरदस्ती रोकता है, तो ये उसके अंदर एक असंतुलन की स्थिति को एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है। क्योंकि आप किसी डॉक्टर से जाकर के पूछिए तो वो कहेगा कि अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, उससे आपको हल्का महसूस होगा। ये क्या है? क्योंकि अगर अंदर वो दबाव है, वो प्रेशर बना हुआ है, वो तनाव बना हुआ है, वो बोझ बना हुआ है, तो आपके संतुलन को वो संतुलित रहने दे ही नहीं सकता। क्योंकि वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो लगातार आपको परेशान करता रहेगा, लगातार परेशान करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप चाहकर भी अपने आप को संतुलित नहीं रख सकते। मित्रों, मुझे एक घटना याद आ रही है, जो मेरे अंबिकापुर शहर की घटना है, जो छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले का हेडक्वार्टर है, कि वहां मुझे, मैं उस समय एक बात बड़ी चर्चा में थी कि एक मां ने अपने जवान बेटे को खो दिया था। वो पुलिस में थे, पुलिस में काफी बड़े अफसर थे, उनको खो दिया। और मां को जैसे ही इस बात की खबर मिली, मां बिल्कुल सनाका खा गई और वो रोई नहीं, उनकी आंखों से आंसू नहीं आए, लेकिन उनका बोलना बंद हो गया, उनकी आंखें मतलब फटी की फटी रह गई। बाद में तो आंखें ठीक हो गई थी और डॉक्टर सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये रो लें, मतलब उनका इलाज एकमात्र यही था कि इनको रोना आ जाए, अगर ये एक बार रो लेंगी, आंखों से आंसू निकल जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगी। केवल बीमारी ही यही थी, यानी कि उस एक बात ने जो होनी चाहिए थी, जो नेचुरल थी, वो नहीं हुई। और उसके न होने ने उनके अंदर की सारी चीजों को अव्यवस्थित कर दिया, असंतुलित कर दिया। इसका मतलब है कि उस समय रोना ही उनके लिए संतुलन था। इसलिए मित्रों, मैंने कहा कि यह सापेक्ष होता है। और जब भी आपकी एनालिसिस में अगर कोई आपको ऐसा पॉइंट मिलता है जहां आपको लगता है कि यहां आप असंतुलित हो गए थे, तो वहां उसको समय की सापेक्षता, परिस्थितियों के मांग के अनुसार उसका विश्लेषण कीजिए। जैसे राम को भी गुस्सा आ गया था जब समुद्र लंका जाने के लिए मार्ग नहीं दे रहा था। राम विनती कर रहे हैं, 3 दिन तक अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। तब राम को भी गुस्सा आ गया था और उन्होंने अपने तर्कस से तीर निकाला और उन्होंने कहा कि अब इस अग्निबाण से मैं इस समुद्र को ही सुखा देता हूं। उनको भी गुस्सा आ गया था। तो वहां का गुस्सा जायज है, वो उनका संतुलन है, ये वो असंतुलन नहीं है। तो आपको भी कभी कभी गुस्सा आएगा, कभी कभी चिड़चिड़ाहट आएगी, बौखलाहट आएगी, निराशा आएगी, रोना आएगा, कभी बहुत ज्यादा हंसना भी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो संतुलन का मतलब ये मत मान करके चलिए कि लगातार एक जैसे बने हुए हैं, चेहरा बिल्कुल निर्विकार जैसा है, निर्गुण ब्रह्म की तरह बने हुए हैं, न उस पर कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, न अंदर कुछ हलचल हो रही है, बस एक अपना बुद्ध की तरह जिंदगी चल रही है और हम कहें कि हम बड़ा संतुलित जीवन जी रहे हैं। मित्रों, ये संतुलित जीवन नहीं है, इसको आपको विशेष रूप से समझना पड़ेगा। जो संतुलन होता है वो समय सापेक्ष होता है, स्थान सापेक्ष होता है और परिस्थिति सापेक्ष होता है। समय को आप परिस्थिति मान करके चल सकते हैं। तीसरा बिंदु इसका यह है दोस्तों कि जो संतुलन होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है का मतलब है कि एक संतुलन का दूसरे संतुलन से कोई संबंध नहीं होता, उनके अपने अपने टुकड़े होते हैं और अपने अपने टुकड़े उनके अपने अपने में पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ये बात अलग है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो एक समुद्र की धारा की तरह होता है, समुद्र की धारा की तरह, जैसे समुद्र की धारा का अपना एक चरित्र होता है, करैक्टर होता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य के व्यवहार का भी एक करैक्टर होता है। कोई व्यक्ति आपको हमेशा गुस्सैल टाइप का मिलेगा, कोई व्यक्ति हमेशा प्रेम से भरा हुआ मिलेगा, कोई व्यक्ति पता लगा कि निर्विकार की तरह ही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये उनका मूल चरित्र है, वो एक मेन स्ट्रीम है, समुद्र की धारा की तरह है, वो एक मूल धागा है। लेकिन उस धागे में जो फूल गुथे हुए हैं, जो छोटे छोटे व्यवहार के जो टुकड़े हैं जिसको मैंने फूल कहा, वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, बावजूद इसके कि वो एक धागे से गुथे हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट है। इसीलिए जब आप अपनी एनालिसिस करेंगे तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि पहले वाले व्यवहार को या पहले वाले इमोशंस को या पहले वाले टुकड़े को आप दूसरे टुकड़े से जोड़कर देख रहे हैं, उसे आप इंडिपेंडेंट मान करके चलिए कि ये मेरा जो पर्टिकुलर टुकड़ा है ये अपने आप में स्वतंत्र है और मुझे सिर्फ इसी की एनालिसिस करनी है, और उसकी फिर आप एनालिसिस कीजिए कि ये जो मेरा इमोशंस रहा या जो संतुलन का जो बिंदु बन रहा है ये समय के हिसाब से कितना सही है, स्थान के हिसाब से कितना सही है और परिस्थितियों के हिसाब से कितना सही है। तब कहीं जाकर आप अपने संतुलन का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकेंगे। मित्रों, ये बात मैंने जानबूझ करके आप लोगों से इसलिए कही है क्योंकि अब जो नेक्स्ट और लास्ट जो एपिसोड होगा जीवन में संतुलन पर, उसमें हम चर्चा करेंगे केवल इन व्यावहारिक बातों की कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे संतुलन को समाप्त करते हैं और किस तरीके से हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा संतुलन स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उस ऑडियो को समझने में आपको तब ज्यादा मजा आएगा या कह लीजिए कि ज्यादा अच्छे से आप समझ सकेंगे अगर आप थोड़ा सा अपना इस तरीके का मूल्यांकन कर लें। मैंने नींद खोलने से लेकर के फिर से नींद लग जाने तक के लंबे वक्त की बात कही है। आप इतने लंबे वक्त को मत लीजिए, आप 2 घंटे को ले लीजिए, 4 घंटे को ले लीजिए, छोटे से टुकड़े को ले लीजिए, आप उसी के आधार पर अपना मूल्यांकन कर लीजिए, तब भी आपको अपने आप को समझने में काफी मदद मिल जाएगी। ये और एक बार यदि अपने आप को आपने समझ लिया तो जो नेक्स्ट ऑडियो जो जीवन संतुलन के बारे में आएगा, जो लास्ट ऑडियो होगा, उसमें मैं जितनी भी बातें आपके सामने रखूंगा वो सारी की सारी बहुत ही व्यावहारिक बातें होंगी। उनको आप अपने ऊपर बड़े आराम से तुरंत लागू कर सकेंगे और मुझे लगता है कि वो फिर एक मजे की बात होगी, आपको अच्छा भी लगेगा, ज्यादा समझ में भी आएगा और व्यावहारिक भी होगा। और तब शायद आप मेरी इस बात पर यकीन कर सकें कि फिर मैंने क्यों ये 3 ऑडियो लंबे लंबे 30-30, 35-35 मिनट के आपको प्रोवाइड किए। आप सोच सकते हैं कि मैं सीधे चौथी बात पर आ जाता क्योंकि आपके काम की तो वही चीज है कि व्यावहारिक क्या चीजें होती हैं वो बता दी जाए। लेकिन अगर आप पहले से एनालिसिस करके रख लेंगे तब फिर आपको लगेगा कि नहीं, जब तक आप इन 3 ऑडियो को अच्छी तरह से सुनकर समझ नहीं लेते तब तक 4th ऑडियो के साथ उतना न्याय करना आपके लिए भी शायद उतना संभव नहीं हो पाता। तो मित्रों, आप लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे लगता है कि अगर आप बैठ जाएंगे कागज कलम लेकर के इत्मीनान के साथ, जैसे कि आप पूजा में बैठते हैं इसी तरीके से बैठ जाइए, तो मुश्किल से 1 घंटे का वक्त लगेगा और आप एनालिसिस कर लेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये जो 1 घंटा है आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े क्रांति का आधार बन जाए, वी डोंट नो। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब जीवन में संतुलन का यह जो भाग 3 है यही समाप्त होता है। भाग 4 में जो इसका लास्ट एपिसोड होगा, हम अब जीवन में संतुलन को लाने के जो व्यावहारिक तत्व होते हैं या इसके खंडित होने के जो कारण होते हैं उन पर विस्तार से बातें करेंगे और इसके बाद जीवन में संतुलन का यह जो विषय है हमारा समाप्त हो जाएगा। और मैं अभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फिर से मुझे कोई अगला विषय सुझाएं ताकि मैं उन पर विचार कर सकूं, उनके बारे में पॉइंट्स ले सकूं और फिर उस पर एक विषय, उनमें से एक विषय चुन करके और फिर उस पर हम लोग ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में चर्चा कर सकें। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।